ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए के परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति के गठन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का हित और उज्ज्वल भविष्य सरकार की हमेशा उच्च प्राथमिकता रहेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार पारदर्शी, धांधली और त्रुटि मुक्त परीक्षाएं कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन, परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार, सभी संभावित कदाचारों पर रोक, डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में समग्र बदलाव की दिशा में पहला कदम है। नई दिल्ली में आज वस्तु और सेवा कर परिषद की 53वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, जिसमें प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों की शर्त में पात्रता और आयु सीमा को लेकर संशोधन की सिफारिश की गई थी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न होगा। भारत और बांग्लादेश ने आज विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कई समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति का आधार स्तंभ है। अपने प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण भी दिया। अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट और तहरीक ए हुर्रियत जम्मू और कश्मीर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले की आज पुष्टि कर दी। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दोनों गुटों को पिछले वर्ष दिसंबर में यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित किया गया था। रूस ने कल रात यूक्रेन के विद्युत केंद्र पर जबरदस्त हमला किया, जिससे पश्चिमी शहर लवीव में कई ऊर्जा उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 2 श्रमिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन की वायुसेना ने अनेक क्षेत्रों में दागे गए 16 मिसाइलों में से 12 को मार गिराया। हमले में 13 ड्रोन भी नष्ट कर दिए गए। पिछले 3 महीनों के दौरान यूक्रेन के विद्युत केंद्रों पर रूस ने 8 बार हमला किया है। बहरीन में भारतीय दूतावास ने कल 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर केंद्रित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। मुख्य कार्यक्रम खलीफा स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में हुआ, जहां योग में रुचि रखने वाले सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। बहरीन में भारतीय दूतावास इस वर्ष मार्च से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और योग के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साप्ताहिक योग सत्र का भी आयोजन कर रहा है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप 2024 में आज शाम एंटीगा के नॉर्थ साउंड में सुपर 8 मुकाबले में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में बृहस्पतिवार को भारत ने अफगानिस्तान को हराया था। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी ने तुर्की में अंत्यालय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।